तो आप सबको मालूम है दीदी जी पांडव भवन के शशि दीदी और शीलू दीदी, ये दो दीदियों की, दो हंसों की जोड़ी है जो हम सबको पांडव भवन में पालना देते हैं। और भक्तियों का विशेष ध्यान आदरणीय शीलू दीदी जी रखते हैं। दीदी जी पिछले 65 वर्षों से 65 ईयर से बाबा की सेवा में है और साकार मम्मा बाबा के हाथों से पले। और आप सबको मालूम है, चाहे हम शिविर करें, चाहे हम भट्टी करें, चाहे हम ने टीचर ट्रेनिंग की, तो सब में दीदी जी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन जितने ही आप बड़े हैं उतने ही आप बहुत सरल चित हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और बड़ों की यही एक निशानी है, जैसे किसी वृक्ष को फल लग जाता है तो वो झुक जाता है। तो मैं देखती हूँ, मैं दीदी को हंस भी रही थी कल जब मैं जा रही थी, बताया ना एक बार तो मैं चली गई थी, मैं क्या दीदी जी आप इतने सरल हैं, जब मर्जी दीदी के कमरे में चले गए, जब मर्जी बात की, बहुत सरलता है। इसलिए कहा जाता है प्यार से प्यार का एहसास होता है, प्यार से प्यार का विकास होता है। पूरे जीवन को प्रेरणा देने के लिए ऐसी महान हस्तियों के एक एक पल का इतिहास होता है, एक एक पल का इतिहास होता है। दीदी जी अभी लगभग 1.5 घंटा 1.25 घंटा हम सबके साथ बिताएंगे, 6:30 से 7:30 आप सबको भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य बताएंगे, अपने अनुभव प्रेरणा युक्त हम सबसे शेयर करेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि में आप सभी पधारे हैं। तो प्यारे बाप दादा, सभी दादियां, सर्व मधुबन निवासी तथा हमारी ओर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मुझे बताया गया कि आगरा जोन से पहली बार पांडव भवन में भट्टी करने आए, ऐसे है क्या? पहली बार जी? हाँ, तो अपने लिए तभी तालियां बजाएं। और कैसा ड्रामा हो गया पता है सारा? बिंदु बहन बताया कैसे हाना हाना हो रही थी? हाँ नहीं, हाना हो रही थी नीचे ऊपर नीचे। हाँ, तो आपका योग बल आपको मधुबन में ले आया, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, खुशनुमा हो गया, बारिश भी चली गई, अभी खूब यहाँ भट्टी का आनंद लेंगे, ठीक है ना? तो आप सभी को अकोमोडेशन जैसे ही मिली तो ये बैज आपको मिला एक माला के साथ, और हम कहते हैं ये विजय माला है, विजय माला पहनने के लिए आपको दिया गया। और इस बैज में क्या लिखा है वो भी आपने पढ़ा होगा, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अंतिम पुरुषार्थ, योग तपस्या भट्टी। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे आए और उसके आधार से हमारा अंतिम पुरुषार्थ क्या होगा, और उसके लिए यह योग तपस्या भट्टी है। तो इस भट्टी का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो आप तक हम अभी कुछ रूढ़िहान करेंगे। बाहर वाले जब आते हैं यहाँ या कहीं भी हम जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछते हैं, आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, आप लोग क्या करते हो। तो हम उनको क्या उद्देश्य बताते हैं कि यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इसका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना, यही बताते हैं ना, सब यही बताते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है। जैसे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उनका क्या उद्देश्य होता है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना। तो ये हमारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। लेकिन मनुष्य से देवता बनने तक एक लंबी यात्रा है, ऐसे नहीं फट से एक सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसलिए 88 वर्ष तो हो चुके हैं, 89वां वर्ष चल रहा है, 1936 से 2025 तक। अब उस उद्देश्य तक हम कहाँ तक पहुंचे हैं वो देखना होगा। बाबा का बच्चा बनने से पहले तो हम क्या कहते, हम क्या थे? अगर कहेंगे शूद्र थे तो ये गलत नहीं होगा, होगा हाँ, क्या थे? सभी शूद्र थे। तो शूद्र से ब्राह्मण कैसे बने, पहला कदम। जैसे ही हमने खुद को पहचाना, बाबा को पहचाना, बाबा कहा, बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए, फिर बाबा द्वारा हमें नियम बताए गए, हमारी बहनों ने नियम बताए, चार मुख्य नियम बताए, ब्रह्मचर्य, अन्न की शुद्धि, संग की शुद्धि, दिव्य गुणों की धारणा, ये हमारे ये चार पिलर है योगी जीवन के। तो हमने समझ लिया और निश्चय बैठ गया, क्योंकि बाबा ने हमारे जन्मदिन पर ही हमें यह बहुत बड़ी गिफ्ट दी। कौन सी गिफ्ट दी बाबा ने? दिव्य बुद्धि की गिफ्ट। वो दिव्य बुद्धि आने से रॉन्ग राइट की समझ मिल गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो ये समझ थी नहीं, न कर्मों की ज्ञान गति का ही पता था, खुद को तो जानते नहीं थे, परमात्मा को भी नहीं जानते थे, लेकिन अच्छा बुरा हानि लाभ उसकी भी इतनी समझ नहीं थी। कई गलत कार्यों को हम सही समझते थे, है ना? तो इसीलिए जैसे ही ये दिव्य बुद्धि बाबा ने दी और हमें यह समझ मिल गई कि हमें अब क्या करना है, तो हमारा पुरुषार्थ शुरू हो गया। और इस पुरुषार्थ की यात्रा में हम अपने आप को क्या कहलाने लगे, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, शिव के बच्चे तो है अनादि रूप से, लेकिन अब हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने हैं। हाँ? और फिर हम दूसरों को क्या बताते हैं, वास्तव में सब ब्रह्मा कुमार कुमारी है, क्योंकि सब ब्रह्मा की संतान भी है, पर अब तक तो ब्रह्मा को पहचाना नहीं था, लेकिन अब ब्रह्मा द्वारा ही परमात्मा नई दुनिया की रचना रच रहे हैं। तो हम ब्रह्मा की डायरेक्ट औलाद बने हैं। तो आप भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, क्योंकि आदि पिता है। आदि पिता द्वारा कैसे ये नई रचना भगवान ने रची है। तो जब ये समझ हमें मिली और हमने पुरुषार्थ आरंभ किया, तो महसूस हुआ कि कैसे हमारा जीवन बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। क्या पहले समझ थी और अभी क्या समझ है। तो जैसे जीवन बदलता गया तो जीवन में सुख शांति की अनुभूति होने लगी। हमारी दिनचर्या बदल गई, कहाँ उठते थे, कब उठते थे, कब सोते थे, अब हमें पता चला नहीं अमृत वेला उठना है। तो क्या किया, दिनचर्या में परिवर्तन लाया। तो दिनचर्या में परिवर्तन लाते ही हमारी अंदर शक्ति आने लगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे अब अपने अंदर वो परिवर्तन लाना है, क्योंकि ये परिवर्तन की जो श्रृंखला है वो अंत तक चलेगी, अंत तक। बाबा कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, अंत तक पढ़ना है, अंत तक हमें पढ़ते रहना है। स्टूडेंट लाइफ का अनुभव है, एक दिन का नहीं है ये स्टूडेंट लाइफ, सारी उम्र क्या ये स्टूडेंट लाइफ है। वहाँ तो स्टूडेंट लाइफ होता है, चलो 25 साल की उम्र तक पढ़ेंगे, 16 साल तक पढ़ते हैं, 5 साल से लेकर के 25 साल तक, चलो 20 साल जो भी पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये तो आजीवन है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, सबसे अच्छा जीवन है विद्यार्थी जीवन। फिर बाबा ने कहा कि केवल विद्यार्थी जीवन नहीं है, परंतु तुम सभी घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो, तो परिवार भी संभालना है, स्टूडेंट लाइफ की अनुभव करना है, परिवार भी संभालना है। फिर बाबा ने कहा तुम तो वानप्रस्थी हो, तो फिर वानप्रस्थी भी कहलाए कि वाणी से परे जाना है। फिर कहा बेहद के सन्यासी हो, हद के सन्यासी नहीं हो, घर बार नहीं छोड़ते हो लेकिन सारी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो और सब संबंध एक बाप से रखते हो। तो मानो एक ब्राह्मण जीवन में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के आधार से सब कुछ हमारा बदल गया। भले लोग कुछ भी कहने लगे, ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हम क्या कहेंगे, अच्छा है जादू लगा। पहले तो हम क्या थे, अंधकार में थे, अज्ञान की नींद में सोए हुए थे, अभी तीसरा नेत्र में हमारा खुल गया है, हमें रॉन्ग राइट की पहचान मिल गई है। कितने विकर्म करते थे पता ही नहीं चलता था, पल पल पर विकर्म होता रहता था, देह अभिमान के वश, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी न जाने क्या क्या जीवन में था। और फिर जैसे ही बाबा ने ज्ञान दिया सबको, आत्मा भाई भाई देखो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, सबका आप उपकार करो, कोई कितना भी आपका अपकार करे आप क्षमा करो और उपकार करो, और सारा बोझ बाबा को दे दो बस। तो बोझ बाबा को देने से हल्के बन गए। और चारों आश्रम जो शास्त्रों में है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, चारों आश्रम एक साथ निभाने लगे, है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम भी ग्रस्त भी, ना परिवार को छोड़ना तो है नहीं, तो इसीलिए परिवार में भी रहना है, जिम्मेदारियां भी संभालनी है, और फिर वानप्रस्थी भी रहना है, और फिर बेहद का संन्यास भी करना है, और कुछ भी छोड़ना नहीं है। कैसा वंडरफुल है ये ब्राह्मणों का पाठ, छोड़ना भी कुछ नहीं है और फंसना भी कहीं नहीं है। मनुष्य या तो छोड़ देते हैं या तो फंस जाते हैं, अब दोनों ही नहीं करना है, और तीसरा भी क्या नहीं करना है, नया भी नहीं जोड़ना है। अभी नया जोड़ेंगे तो चुकचुक कब करेंगे सब, तो फंसना भी कहीं नहीं है, छोड़ना भी कुछ नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं है, तो क्या करना है? चौथा ऑप्शन क्या है? हाँ, चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है निभाना है, निभाना है, ये ऑप्शन है निभाना है माना, क्योंकि इतने जन्मों के हिसाब किताब है, वो चुकतू भी करने हैं, चुकतू भी करना है, फिर साथ साथ 21 जन्मों की कमाई भी करनी है, 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो चुकतू करना है पहले, और फिर 21 जन्मों की कमाई भी करनी है, माना टोटल 84 जन्म ही हमको अपना संवारना है, और उसके लिए समय कितना है? केवल ये छोटा सा आज बाबा जी का सुप्रीम सुप्रीम पुरुषोत्तम संगम युग, ये सुप्रीम शब्द बाबा ने जोड़ दिया, पुरुषोत्तम संगम युग तो बाबा कहते हैं, लेकिन सुप्रीम माना 4 संगम भी आते हैं, लेकिन ये संगम सबसे श्रेष्ठ सबसे ऊंचा ये संगम युग है, जबकि विश्व बदलता है, परंतु विश्व को बदलने से पहले हमको बदलना है, इसलिए हम लोगों का नारा क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हाँ, कई कहते हैं ना, आप लोग कहते हो विश्व को बदल देंगे, विश्व को बदलेंगे, कैसे बदलोगे, इतनी बड़ी दुनिया है कैसे बदलोगे? तो हम कहते हैं हमको कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा पेड़ होता है उसको पानी कैसे देते हैं, एक एक पत्ते को थोड़ी देते हैं, एक एक पत्ते को नहीं देते हैं, बीज को दे देते हैं, जड़ को दे देते हैं, जड़ अपने आप पहुंचा देता है पेड़ में, हमको बस एक ही काम करना है, बीज को जड़ को देना है पानी। तो बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन का आधार ही स्व परिवर्तन है, हम दुनिया को नहीं बदल सकेंगे, हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, कर्म की गति है, हम फलाने को सुधारेंगे और वो न सुधरे तो हम भी नहीं सुधरेंगे क्या? बस स्व परिवर्तन माना बस खुद को बदलो, खुद को बदलो, हम दूसरे को दोष नहीं देंगे, ये बदले तो मैं बदलू, एक अंगुली उसके तरफ तो 3 तो अपने तरफ है, मैं 3 गुना बदलूं तब वो 1 गुना बदलेगा, इसीलिए दूसरे को ना हम दोष दे सकते हैं क्योंकि हिसाब किताब है कर्मों का, दोष भी क्या देंगे, हमारा भी तो हिसाब किताब है ना उनके साथ, तो इसीलिए किसी को दोष भी नहीं दे सकते, हर एक का अपना अपना संस्कार है, क्या किस जन्म का कौन सा हिसाब किताब होगा वो भी पता नहीं है, तो इसीलिए न किसको दोष देना है न हम जबरदस्ती किसको बदल सकते हैं, तो सबसे सहज उपाय क्या है? खुद को बदलना, बस। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कुछ दे रहा है, पर मैं ना दूं, उस जैसा मैं व्यवहार ना करूं, पर मुझे ज्ञान है मुझे क्या करना है, तो हम सच्चे ब्राह्मण बन गए। अभी हम क्या कहेंगे? हम ब्रह्मा की मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण है, है ना, नशा चढ़ता है ना, ब्रह्मा की डायरेक्ट संतान, वैसे कहेंगे भाई ब्रह्मा हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर आदि पिता, अब आदि पिता की बात 84 जन्म, तो 84वां ये जन्म है, तो कितनी बार ग्रेट 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 कहना पड़े, 84 बाप पहले वो आदि पिता, भाई मेरा बाप का नाम क्या है, मेरे दादा का नाम क्या है, फिर परदादा का, उसके पिता का, उसके पिता का, चलो कोई कह भी दे पता भी चल जाए, चलो कुछ भी, अभी तो पर हाँ कितने आपके दादा परदादा कितनों के नाम आपको पता होगा, पता होगा कहाँ पता। इस पर एक जोक सुनाते हैं, एक जोक सुनाते हैं, शास्त्रार्थ हो रहा था, शास्त्रार्थ हो रहा था दो विद्वानों के बीच में, तो एक ने दूसरे से पूछा, अच्छा मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि आप वो उसका उत्तर देना। उसने कहा ठीक है पूछो। हाँ विद्वान था वो। उसने कहा अच्छा दशरथ के बाप का नाम क्या था? अब पता नहीं क्या होता, आपको पता है? हाँ दशरथ के पिता का नाम क्या था? जो भी, अब उसने बता दिया होगा जो शास्त्रों में पढ़ा है। अच्छा उसके पिता का नाम क्या था? अब वो तो मुझ गया, उसके पिता का नाम था वो तो वर्णन ही नहीं। तो अच्छा फिर आप पूछो, वही प्रश्न उससे पूछा, दशरथ के पिता का नाम क्या था? तो बताया। अच्छा उसने वो पिता का नाम उस रूप से नहीं बताया, उसने कहा दशरथ के पिता का नाम था ग्यारह रथ। ग्यारह रथ। अच्छा उसके उसके पिता का नाम बारह रथ, तेरह रथ, चौदह रथ। अभी गिनती करते जाओ। हाँ गिनती करते जाओ। तो सबके पिता का नाम बता दिया। अब लोगों को तो समझ में नहीं आया, उन्होंने तालियां बजाई कि जीत गया। क्योंकि बिल्कुल सामने जवाब दे रहा था और वो तो मूंझ गया दूसरा वाला। तो इसीलिए ब्रह्मा हमारा कौन सा पिता है? चौरासीवा पिता। परंतु इस समय वो कौन सा पिता बनाए? डायरेक्ट ना, डायरेक्ट आदि पिता की हम संतान। आज बाबा ने पुष्कर को याद किया, पुष्कर कल याद किया, आज याद किया। तो पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है, तो देखा है जिन्होंने पुष्कर देखा है ब्रह्मा का मंदिर, हाथ उठाओ। अच्छा कईयों ने देखा है, बहुत अच्छा। तो उस पर लिखा हुआ है, मंदिर तो छोटा है, मंदिर कोई बहुत बड़ा नहीं है और दाढ़ी मूछ वाला है। उस पर लिखा है जगत पिता ब्रह्मा, ये ऊपर से लिखा हुआ है जगत पिता ब्रह्मा। तो सारी जगत का वो पिता है, लेकिन हमें ये नशा है कि वो जगत का पिता हमारा डायरेक्ट पिता बनाए। अभी डायरेक्ट पिता बने ना, तो हमको ग्यारह रथ बारह रथ तेरह रथ कहने की दरकार नहीं है। जैसे राम को नशा था ना मैं किसका बेटा हूँ, तो देखो बाबा ने हमें वो नशा भी चढ़ा दिया कि तुम ब्रह्मा की डायरेक्ट मुख संतान बने हो। वो लौकिक ब्राह्मणों से पूछो वो कहेंगे ब्रह्मा की संतान है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं जानते। और न जाने कितनी ग्लानी भी करती है ना, बहुत ग्लानी कर दी, कहानी बताते हैं ना ब्रह्मा की और विष्णु की, तो दोनों दोनों कैसे आपस में भिड़ गए कि वो कहे मैं वो कहे कि मैं, शिव जी ने उनको कहा कि आप परमात्मा का अंत पाओ, कुछ ऐसी कहानी है। तो कहा कि अच्छा हम परमात्मा का अंत पाने जा रहे हैं, तो परमात्मा का अंत पाने लिए ब्रह्मा जी को ऊपर भेजा और विष्णु जी को नीचे भेजा। वो ऊपर भेजा ब्रह्मा जी को, तो वो जो ज्योति थी वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, शिव की ज्योति बढ़ती गई। वो तो अंत तो पा ही नहीं सका, तो लेकिन थक गया, अंत पा नहीं सका। तो फिर वो ऊपर चढ़ते चढ़ते जब वो थक गया, तो उसने देखा वो चांद का चकोर, वो बिल्कुल वो वहाँ तक पहुँच गया। वो कोई जो पक्षी इतना ऊँचा जाता, तो उसको कहा कि आप मेरे साक्षी बनना और कहना कि मैंने अंत पा लिया। अब विष्णु नीचे गया नीचे गया नीचे गया, वो लाइट नीचे गई नीचे गई नीचे गई, अंत तो पा नहीं सका। तो उसने आकर के कहा मैं तो अंत नहीं पा सका, पर ब्रह्मा ने कहा मैंने अंत पा लिया। अब अंत पा लिया तो झूठ बोला, तो बताते हैं कि उनको श्राप मिल गया, तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। अब बताओ कैसी ग्लानी कर दी हमारे ब्रह्मा बाबा की, झूठ बोला। लेकिन ब्रह्मा ऊपर गया और विष्णु नीचे गया, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? ब्रह्मा का उत्थान चढ़ती कला और विष्णु की उतरती कला। क्योंकि पहले जन्म से शुरू होगा ना, कोई गाड़ी नहीं लेता, एक दिन भी गाड़ी चलाई अगले दिन तो कहेंगे एक दिन पुराना है, ये तो नहीं कहेंगे एक दिन नया है, एक दिन पुराना है। तो इसीलिए विष्णु नीचे आता है और ब्रह्मा ऊपर जाता है। तो हम भी ब्रह्मा की संतान, अब हमारा कौन सा चढ़ती कला है, और चढ़ती कला तेरे बाणे सर्व का भला। हाँ, तो हम ब्राह्मणों की चढ़ती कला है। फिर बाबा कहते चढ़ती कला भी नहीं, तुम्हारी तो उड़ती कला होनी चाहिए। अभी चढ़ने का समय गया, चलने का भी समय गया, चढ़ने का भी समय गया, भागने का भी समय गया, अभी उड़ना है। समय कम है तो क्या करना पड़ेगा, होता है ना, कही होंगी ना, भाई समय कम है मुझे पहुंचना है तो चलो फ्लाइट पकड़ो, ट्रेन तो टाइम लेगी, तो फ्लाइट में आएंगे ताकि फ्लाइट में जल्दी पहुंचे। तो बाबा कहते तुम्हारी भी उड़ती कला हो, पर उड़ती कला के लिए क्या जरूरी है, हल्का बनना। ट्रेन में तो जितना बार ले जाओ चलो कोई नहीं बोलेगा, पर फ्लाइट में तो वजन होता है 15 किलो से ज्यादा नहीं, 7 किलो हाथ का वजन, उससे ज्यादा नहीं। तो भाई तो क्या करना पड़ता है, भाई फ्लाइट में जाना है, ट्रेन के लिए तैयारी थी पर समय हो गया नहीं मिला, चलो फ्लाइट में जाओ। तो भाई जो एक्स्ट्रा सामान है वो सब क्या करो, हटा दो, निकाल दो, भाई नहीं तो पैसा भरना पड़ेगा, थोड़ा भी 1 किलो भी ज्यादा हुआ तो पैसा भरना पड़ेगा। तो अभी बाबा कहते उड़ती कला के लिए क्या करना होगा, हल्का बनना पड़ेगा, हल्का बनना पड़ेगा। और हल्का कैसे बनेंगे, जो भी बाकी सब बोझ है, दो काम करना है, एक तो हिसाब किताब चुकतू करना है, दूसरा अगर कुछ है भी बाबा को दे दो। होता है ना, भाई तुम ट्रेन में आते हो, तुम ये मेरा सामान लेके आना, मैं तो फ्लाइट में जा रहा हूँ, तो दूसरे को दे देंगे। अब बाबा कहते मुझे दे दो, क्यों बोझ उठा के चल रहे हो, उड़ना है तो बोझ को क्यों उठा रहे हो, तो उठाना भी नहीं है बोझ, तो क्या करना है, बाबा कहते मुझे दे दो। तो हम बाबा को दे देते हैं, देते ना, सबने दे दिया बोझ बाबा को, हल्के हो के उड़ के आ गए। हाँ यार, मैंने तो अभी नैनीताल वालों से पूछा, कईयों से पूछा, वो कहे कि हमने कहा यहाँ तो बहुत बारिश थी, कहते बहन जी हमारे यहाँ तो और भी ज्यादा थी तो हमें तो ये अनुभव है, सब रोड टूटा हुआ भी देख करके आए, तो कहा कि हमारे यहाँ ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा, ये कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ तो बहुत नुकसान हुआ, बहुत ये हुआ, क्योंकि किसी ने यहाँ तक कहा कि जो खास जो ऊंचाई पर मंदिर है, चार धाम है ना, ये गंगोत्री जमुनोत्री और वो केदारनाथ बद्रीनाथ, उसके भी रास्ते टूट गए हैं, बहुत रास्ते टूट गए हैं, कईयों को रोका हुआ है, ये सब हो रहा है। तो कहा बहन जी ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अब हम लोग यहाँ बहुत बड़ी बात समझ रहे हैं कुछ भी नहीं है जी, आप लोगों को भी कुछ नहीं लगा खैर तो अच्छा अच्छा चलो बहुत अच्छा। तो देखो हम लोग सोच रहे थे अभी कैसे क्या होगा, कैसे होगा, अभी नीचे रखें, ऊपर रखें, कहाँ रखें, फिर एक एक को छोटी छोटी गाड़ियों में आना पड़ेगा, आएंगे नहीं आएंगे, इतना फिर खर्चा करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या हम सोच रहे थे। आप लोगों ने कहा नहीं कुछ भी हो, हमको तो पांडव भवन ही जाना है और सहज ही प्रशासन ने छुट्टी दे दी और आप सबको मिलना, कुछ किसी ने रोका तो नहीं ना, किसी ने नहीं रोका। तो देखो बाबा की मदद थी, आपका योग बल था, हाँ ये जरूर योग बल था, क्यों नहीं। तो इसीलिए अब बोझ बाबा को दिया और बाकी तो बाबा कहते मुझे याद करो, मुझे याद करो, और तो आपके विकर्म विनाश होंगे, आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। फिर बाबा पहली बार कहते देही अभिमानी बनो, फिर बाबा कहते विदेही बनो, फिर कहते अशरीरी बनो। हाँ तो कई अंतर पूछते हैं, तीनों में अंतर क्या है, देही अभिमानी बनो, विदेही बनो और अशरीरी बनो, इसमें क्या अंतर है। तो देही अभिमानी तो फर्स्ट स्टेज है ना, देही अभिमानी माना कर्मयोगी, कर्मयोगी कर्म करते हुए भी बाबा की याद, पर वो याद तब ठहरेगी जब देही अभिमानी होंगे। अगर देह अभिमान होगा तो बाबा की याद तो ठहरेगी नहीं। इसीलिए कहते हैं ना भाई, व्यर्थ संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं, क्योंकि देही अभिमानी तो पहले बनो तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। फिर विदेही बनो, विदेही कैसे बनो, हाँ मेरा कुछ नहीं सब बाबा का। व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, क्योंकि मेरा मेरा मैं मेरा मैं मेरा सोचते रहते हैं। अब मैं मेरा कुछ है ही नहीं। राजा जनक को विदेह राजा कहते थे, इतने बड़े महल में रहता है तो भी उसको उस महल का मोह नहीं था। बताते हैं ना कैसे एक सन्यासी उनके पास गया कि आप विदेह राजा कहलाते हो, महलों में रहते हो, हमने तो सन्यास किया, आप महलों में रहते भी आपका कोई मोह नहीं है। तो बताते हैं ना उनको एक दिया दिया, दीपक दिया कि जाके अवलोकन करके आओ मेरा महल। तो अवलोकन तो किया लेकिन ध्यान उसका दिए पर था। तो दिए पर ध्यान होने के कारण अवलोकन किया न किया, देखा न देखा, उसके लिए बराबर था। और कहा कि बस दिया नहीं बुझना चाहिए। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, हर कर्म करते देही अभिमानी स्थिति रहे और अब और विदेही अवस्था रहे। विदेह माना बस सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं। ट्रस्टी होके रहो, ट्रस्टी होके रहेंगे तो आपको कुछ भी हुआ आप उसमें डरेंगे नहीं और चिंता नहीं करेंगे, कोई भी प्रकार का भय नहीं आएगा। और सब क्योंकि बाबा का है, मेरा तो है नहीं। अब इसमें भी कोई कल्याण होगा, फिर ड्रामा का ज्ञान मिलता है कि हर बात में कल्याण है, हर और कुछ भी नया नहीं है। आश्चर्य भी नहीं खाएंगे, प्रश्न भी नहीं पूछेंगे। नहीं तो ये प्रश्न पूछना, आश्चर्य खाना, डरना, चिंता करना, वो सब खत्म। ड्रामा का ज्ञान बाबा ने हमें दे दिया है तो हमारी उड़ती कला होती है। फिर हम कहते हैं ट्रैवल लाइट। तो ट्रैवल लाइट माना आत्मा जब उड़ती है तो शरीर का तो कुछ भी नहीं आता ना साथ में, केवल आत्मा ही उड़ती है। तो आत्मा भले उड़ती है लेकिन आत्मा के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मन बुद्धि और संस्कार। तो मन बुद्धि संस्कार में क्या ले जाना है वो भी बाबा बताते हैं। तो है ना हमारे अष्ट शक्तियों में समेटने की शक्ति। तो समेटने की शक्ति में क्या दिखाया है, उस चित्र में क्या दिखाया है, हाँ एक पर्स दिखाई है, हाँ एक वो बक्सा दिखाया है, सूटकेस, और तीसरा होल्ड ऑल। होल्ड ऑल, हाँ होल्ड ऑल में वो है ना, पहले जमाने में बिस्तरा भी ले जाते थे, और केवल बिस्तरा नहीं सब कुछ उसमें ले जाते थे। तो पर्स तो चलो हाथ में ही पकड़ी है, और वो एक छोटा सूटकेस, फ्लाइट में जाते हैं तो हैंड लगेज लेते हैं, तो हैंड लगेज भी लिमिटेड है, 7 किलो ज़्यादा नहीं। तो मन है हमारा हैंड बैग। अब मन में क्या ले जाना है, फिर छोटा छोटा जो हमारा सूटकेस है या जो वो ऊपर रखते हैं फ्लाइट में, वो है हमारी बुद्धि, क्योंकि वो कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कुछ भी होता है भाई, ये छोटे सूटकेस में रखा है, हैंड लगेज में रखा है, तो निकाल सकते हैं, फ्लाइट में भी निकाल सकते हैं। पर्स तो बार बार खोलनी पड़ती है। और फिर जो होल्ड ऑल है, वो जो बड़ा सब बिस्तर बंद जिसको कहते हैं ना, तो उसमें तो सब चीज़ें पड़ी है। अब वो तो हम चेक इन में दे दिया ना, फ्लाइट में गए तो वो चेक इन में दे दिया। अब रास्ते में कुछ चाहिए तो हमको मिलेगा नहीं, हाँ वो तो कहाँ मिलेगा, हुँ? जब हम मंजिल पर पहुँचेंगे। तो मन बुद्धि संस्कार, तो मन है हमारा हैंड लगेज, मतलब हाथ में पर्स, वो तो छोटी पर्स होती है, अपने साथ रखते हैं। अब वो पर्स में क्या रखते हैं, पैसा रखते हैं, दवाई रखते हैं ना, जो बार बार ज़रूरत पड़ती है। मानो वो कहाँ बैठ के वो हैंड लगेज से वो ऊपर जो रखा है उसमें से निकालेंगे। तो बार बार जो चाहिए वो हाथ की पर्स है। फिर कभी कभी जो चाहिए वो फिर ऊपर में रखा है तो निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मन है हमारा हैंड लगेज। अब मन में क्या रखना है, मन में क्या रखना, बहुत जो जरूरी संकल्प है वो ही मन में रखने हैं। बताते ना चार प्रकार के संकल्प है, आवश्यक संकल्प, व्यर्थ संकल्प, सकारात्मक संकल्प और नकारात्मक संकल्प। ये चार प्रकार के संकल्प आते हैं, तो हमको देखना है अभी कौन सा संकल्प मन में चल रहा है। अब ये जरूरत नहीं है तो हम क्यों डाले पर्स में, जरूरत ही क्या है, फिर बोझ हाथ में उठाना पड़ेगा, ये डाल दो वो छोटे सूटकेस में या डाल दो होल्ड ऑल में। तो हम देखते हैं मन में क्या हमें रखना है और क्या नहीं रखना है, वो हमारे ऊपर है। बाबा कई बार कहते हैं मन आपका मालिक है या आप मन के मालिक हो, कौन मालिक है, हम मालिक है मन के। तो क्या हमारे हाथ में नहीं है मन में क्या सोचना है या क्या नहीं सोचना है, तो ये तो हमारे हाथ में है। ट्रैवल लाइट में तो पर्स भी हल्की होनी चाहिए। फिर तो मन है हमारी पर्स, फिर बुद्धि क्या है, वो जो है ना जो हमने ऊपर रखा है फ्लाइट में ताकि कब जब चाहिए निकाल सकते हैं, वो हमारी बुद्धि यानी गुण और संस्कार शक्तियां। तो मन और बुद्धि, तो बुद्धि में क्या धारण करो, गुण और शक्तियां। मन में साधारण क्या करो, श्रेष्ठ संकल्प, व्यर्थ को निकाल देना है। तो गुण और शक्तियां, किस समय किस गुण की आवश्यकता है, ये खजाना है अपना सारा। तो पर्स में नहीं रखेंगे ना, पैसा भी है जेवर भी है पता नहीं जो भी हो वो है अपने साथ ही रखेंगे, तो पदों पर रखेंगे हाथ में तो नहीं उठाएंगे। तो इसीलिए बुद्धि माना गुण और शक्तियां जो बाबा ने हमें दिए वो समय पर यूज करने लिए। और इसलिए बाबा कहते हैं जब सहन शक्ति चाहिए तब सामना करने की शक्ति यूज मत करो, और जब परिस्थिति का सामना करना है तो सहन शक्ति यूज नहीं करो, नहीं तो उल्टा हो जाएगा ना। उस दिन बाबा ने कहा कोई ऐसा चोर आ जाए आपके पास तो क्या करोगे, हाँ करोगे क्या, नहीं 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 मुझे मारना नहीं है, हिंसा नहीं करनी है, अब क्या करोगे, लाठी लाठी पकड़ के उसको हाँ भगा दो, हाँ चिंता नहीं करो ये हिंसा नहीं है, ये तो कैसे पहुंच गया। और उसमें बहादुर बनो, शिव शक्तियां बनो, ये नहीं कि अरे अरे भाई को बुलाओ भाई को बुलाओ, उस समय भाई नहीं हो तो हाँ। बाबा ने कहा शिव शक्तियां हैं, फिर बाबा कहते हैं चूहे से भी डरती है, अब शिव शक्तियां चूहे से डरे डरे क्या, हाँ शिव शक्तियां कैसी होनी चाहिए, चूहे से डरे कॉकरोच से डरे। एक बहन थी वो अचानक चूहा आ गया, अरे चूहा आया चूहा आया, मैंने कहा चूहे से डरते क्यों हो, क्या करेगा वो, काटेगा क्या, कुछ नहीं करेगा। तो कहा नहीं 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 चूहा, तो मैंने कहा डरती क्यों, तो कहती नहीं गंदा है ना चीची गंदा है इसीलिए कहीं वो मेरे पास ना आए, तो इसलिए डर लगता है। पर बाबा कहते डरना थोड़ी है, कुछ भी नहीं डरना है, हाँ अगर कोई ऐसे आ जाए मान लो बंदूक लेकर के आ जाए और कहे कि आपका जेवर दो, जो आपके पास जेवर है पैसा है घड़ी है वो दो नहीं तो मार डालूंगा, तो उस समय क्या निर्णय लेंगे, लड़ना शुरू करेंगे, क्या करेंगे, लो भाई लो तुमको जो चाहिए लो, जान बची लाखों पाए। अच्छा फिर तो आपके केवल धन के लिए आया, तो आया तो ले लो भाई, मेरे पास और तो कुछ है ही नहीं सब दे दिया। परंतु अगर आपकी आपकी चरित्र के पीछे आए तो क्या करो, हाँ ले लो चरित्र मेरा तो क्या करना है, हाँ बिल्कुल शिव शक्ति काली रूप बनना है, तो काली रूप बनना पड़ेगा, बिल्कुल काली रूप बनना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं। और अगर सचमुच हमने देखा है बाबा की याद में अगर है ना, तो वो सामने वाले को भी लगेगा ये अकेली नहीं है, कई अपना अनुभव सुनाते हैं कि कैसे अकेली जा रहे थे और सुनसान जगह थी, लेकिन वो बाबा को इतना याद करते हुए गई, जो वो कोई पीछा भी कर रहा था लेकिन वो बाबा की याद में थी, और कैसे वो व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया। फिर जब उससे पूछा गया कि अकेली थी और आप भी अकेले थे तो आपने क्यों नहीं कुछ किया, तो कभी अकेली नहीं थी, कोई बूढ़ा आदमी उनके साथ था, तो कौन बूढ़ा आदमी उनके साथ था?
ब्रह्मा बाबा।
तो बूढ़ा आदमी साथ में था। सचमुच ये कितनों का अनुभव है, बात मत पूछो। तो इसीलिए तो चरित्र तो क्यों देंगे हम? हमने तो, बाबा ने हमको इतना सुंदर चरित्र दिया है, तो किस समय कौन सी शक्ति को यूज करना है वो बाबा कहते हैं, इसकी भी बुद्धि चाहिए। इसीलिए बुद्धि की तुलना किससे की गई है? तराजू से। तराजू में एक तो सुई होती है, सुई माना ऊपर केवल एक बाबा, दूसरा न कोई। वो तराजू की जो वर्टिकल जो ये ऊपर जिस सुई जाती है कांटा, वो ऊपर की ओर बाबा की तरफ। फिर जो डंडी है, सीधी डंडी, उसको क्या कहेंगे? पक्षपात रहित, माना पक्षपात नहीं करना, इसी तरफ ज्यादा उस तरफ कम नहीं। तो पक्षपात रहित रहना, जिसको बाबा कहते हैं दुख सुख हानि लाभ जय पराजय निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान, तटस्थ है बिल्कुल सीधा। और वो जो नीडल है, जो सुई है, वो भी सीधी, तो सीधी ऊपर और ये सीधा लेवल में। और जो पलड़े हैं, उन पलड़ों में वजन है, तो वजन किसको देना है? वजन किसको देना है? मूल्यों को वजन देना है। इस समय कौन सा मूल्य हम यूज करें, वो मूल्य सहन करना है, समाना है। हमको कौन सी शक्ति धारण करनी है, वो मूल्य उस समय बुद्धि में आए, तो ये हमारे साथ चले हर वक्त इस यात्रा में। और संस्कार, वो संस्कार हमारा होल्ड ऑल है। संस्कार कैसे बनते? कर्म से बनते हैं। तो हमारे जो भी बाबा कहते हैं ना, अनेक कार्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मैंने इतनी सेवा की, मेरा मान नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं हुआ, मुझे शान नहीं मिली। हाँ, कल भी बाबा ने कहा नाम मान शान उसके पीछे मत जाओ, कोई बात नहीं। मैंने इतनी सेवा की, सेंटर पर गया तो मुझे पानी भी नहीं पूछा, इतनी मैं मुझे भूख लगी थी पर खाना भी नहीं दिया। मान लो ये कभी संकल्प ना आए, कभी नहीं आए। तो इसलिए कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। तो क्यों नेकी कर दरिया में डाल? यानी वर्णन नहीं करो। कई वर्णन करते, मैंने ये इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, ये किया, वो किया। अरे किया भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। तो पहले तो बहुत नेकी होती थी, दरिया जितनी नेकी होती थी, सागर तो कितना विशाल है, बहुत नेकी करते थे लोग। पर धीरे धीरे ये कहावतें बदलती गई। फिर आया नेकी कर कुएं में डाल, क्योंकि कुआं ही पर्याप्त है नेकी के लिए, इस दरिया तो बहुत बड़ा है। तो नेकी कर कुएं में डाल। फिर धीरे धीरे ये कहावत ही बदल गई, नेकी कर खड्डे में डाल। खड्डा ही इनफ है इसके लिए। और कलयुगी दुनिया में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो क्या कहेंगे? नेकी थोड़ा सा किया 1%, 99% अपने पर्स में अपने लिए, तो भ्रष्टाचार हुआ ना। तो लेकिन हम ब्राह्मण बने, चलो अब जैसे ब्राह्मण बने, परिवर्तन आया, तो भविष्य हमारा निश्चित है, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गीता के अंदर भी आता है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, फल की चिंता मत करो, फल ईश्वर के हाथ में है, उनको छोड़, उनको दे दो, वो जो देवे। और अगर सफलता मिली, किसका मोबाइल चला, सफलता मिली तो फिर अभिमान करने की जरूरत नहीं है, मैंने किया मैंने किया। नहीं, क्या कहेंगे? बाबा ने करवाया, बाबा की मदद से हुआ। और अगर असफलता मिली तो दुख भी नहीं करना है, मैंने इतना किया तो भी असफलता मिली, उसकी जगह उस समय क्या सोचो कि ये असफलता सफलता की सीढ़ी है, ये असफलता असफलता नहीं है, ये सफलता की सीढ़ी है। मेरा अनुभव बढ़ा, अनुभव तो बढ़ा ना। कोई भी व्यक्ति ने सफलता पहले कदम से कभी नहीं पाई है, इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए मैं इतनी इतनी मेहनत की मैं सफल हो असफल हो गया, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बाबा, मैंने मेहनत की, अभी बाबा के हाथ में है जो भी बाबा को देना है। तो इसीलिए न बढ़ाई करनी अपनी, न अपने अंदर वो हीनता की भावना या वो हताशा की भावना लानी है। तो ये सच्चे ब्राह्मण बने। और फिर उसने आगे लक्ष्य क्या रखा कि सच्चा ब्राह्मण बनना माना हमको अभी क्या करना है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बस बाबा को पता चला कि मेरा संपूर्ण रूप पतन में है, तो ब्रह्मा बाप ने यही लक्ष्य रखा, बस मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, बस संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। अब दोनों में भी अंतर है, संपन्न किसको कहेंगे, संपूर्ण किसको कहेंगे, है देवताओं की महिमा में आते हैं सर्व गुण संपन्न, तो गुणों में संपन्न, और 16 कला संपूर्ण, तो कलाओं में संपूर्ण। चंद्रमा पूर्णमासी के दिन संपन्न भी होता है संपूर्ण भी होता है, तो संपन्न माना प्रकाश में संपन्न, भरपूर पूरा पूरा प्रकाश, और संपूर्ण भी होता गोलाकार होता है। तो संपन्न किसमें बनना है, गुणों में, कोई भी गुण की कमी न रहे। और संपूर्ण किसमें बनना है, पवित्रता की कलाओं में, इतनी पवित्रता की कलाएं हो। बाबा जो कहते हैं सिविल आई बनाओ, आत्मा आत्मा देखो, ये इतनी अंदर की पवित्रता हो। बाबा साकार मूल्यों में तो बल कहते थे कि कर्म तक नहीं लाओ, मन में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अव्यक्त मूल्यों में तो बाबा कहते हैं मन में तो क्या, स्वप्न में भी नहीं आए। अगर स्वप्न में भी कुछ ऐसा विकार का या कुछ भी ऐसा बुरा आता है, माना अभी तक वो संस्कार में है, तभी तो वो स्वप्न में आया, चलो कर्म में नहीं लाया, पर स्वप्न में भी नहीं आया, इतने संस्कार हमारे शुद्ध हो। तो जब ऐसी स्थिति होगी तब तो संपन्न बनेंगे। और संपन्न संपूर्णता के नजदीक पहुंचने से पहले कैसे पता चलता है कि हम संपन्न संपूर्ण बन रहे हैं, जब हम कर्मातीत बनते हैं। कर्मातीत और संपन्न संपूर्ण में थोड़ा अंतर है। कर्मातीत स्थिति माना कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्म के बंधन से न्यारे हैं, कर्म के बंधन से न्यारे हैं, जरा भी अटके हुए नहीं है, कोई वर्णन नहीं है। हमारी दादी जानकियां दादियां सब हमारी वो मिसाल है, कैसे कर्मातीत बनती गई देखते गए हम। बड़ी दादी तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी, सब कुछ क्या नहीं किया, शांतिवन को कितना बढ़ाया, विदेश की सेवाएं कैसे शुरू की, मतलब दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, ये इन दादियों को हम देखते हैं। और अव्यक्त बाप दादा के लिए गुलजार दादी ने क्या नहीं, अपना शरीर होम दिया पूरा बाबा को। लेकिन जब हमने उनको देखा उनके अंतिम दिनों में कैसे न्यारे प्यारे होते गए, बिल्कुल ऐसे न्यारे प्यारे जैसे कि वो यहाँ है ही नहीं। हम दादी के पास जाते थे क्योंकि दादी से तो हमारी बहुत नज़दीक थे ना, यही मधुबन में रहते थे, तो कोई भी छोटी छोटी बात दादी के पास जाते थे। तो हमने देखा दादी इतनी उपराम होती जा रही, अब कुछ भी क्या पूछे दादी से, दादी की स्थिति इतनी ऊंची, तो कोई प्रश्न पूछने का तो सवाल ही नहीं, लगता था बस दादी के सामने बैठे रहे दृष्टि ले, और दादी भी दृष्टि दे रही है, सचमुच निहाल हो जाते थे, वैसे बस दादी के सामने बैठे। और बातें तो वो जो लगता था हमें बड़ी बड़ी, वो दादी की स्थिति के आगे तो वो छोटी छोटी लगने लगी, बिल्कुल। तो इसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था के नजदीक और फिर कैसे संपूर्णता की स्थिति आत्मानुसार। तो हम देखते हैं कि संपन्न बने, ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही बने, कैसे न्यारे प्यारे होते जा रहे थे। बहुत उसकी भी बहुत बातें हैं लेकिन अभी समय नहीं है, परंतु सब ब्रह्मा बाबा कैसे बने, मम्मा भी कैसे बोले कैंसर था उनको, लेकिन इतनी इतना दर्द भी होगा, लेकिन कैसे मम्मा सदा मुस्कुराती थी, कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि उनको कुछ दर्द भी है। ये मम्मा की स्थिति थी। तो हम देखते हैं दादियों ने कर्मातीत अवस्था को पा करके कैसे संपन्न संपूर्ण बने, और फिर इसके बाद क्या बनना है, फरिश्ता संपन्न बने। अभी ब्रह्मा बाप संपन्न बने, संपूर्ण बने, तो वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारी दादियों ने दूसरा जन्म तो ले लिया है, लेकिन विशेष कार्य अर्थ है। तो कई कहते क्या उनका 85वां जन्म हुआ, हम कहते 85वां जन्म नहीं हुआ, 84वां ही जन्म है। परंतु बाबा ने उनको क्यों एडवांस में भेजा, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना करने के वो निमित्त बनेंगे, नई दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त बनेंगे। तो 84 प्लस, कई इतने प्लॉट्स होते हैं, मकान होते हैं, तो वो मकान जो मेन प्लॉट होता है, जमीन होती है, उसमें तो बड़ा मकान है, लेकिन उसके बाजू में छोटा मकान भी बना देते हैं, है ना, छोटा मकान, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में कहते एनेक्स। एनेक्स माना उसी प्लॉट का नंबर में उसके बाजू में। तो ये उनका वो प्लस का जन्म है, और उस प्लस के जन्म में वो विशेष कार्य अर्थ गए। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तब बाबा ने ये कहा कि एडवांस पार्टी अब आरंभ हुई है, और मम्मा उसकी लीडर बनेगी, एडवांस पार्टी की लीडर। तो देखो उसके बाद ये एडवांस पार्टी कैसे अभी क्या कार्य कर रही है, वो सब तो गुप्त है। बाबा कहते हैं अंत में प्रत्यक्ष होगा, तो परंतु अंत के लिए भी तैयार होना है, तो इसीलिए उसके लिए पहले हमें अंत का भी सामना करना है। जो समझते हैं कि अंत जब होगा वो हम सामना कर सकेंगे, डरेंगे नहीं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, सब नहीं उठा रहे। और जो समझते नहीं, हम तो डर जाएंगे, हमको बाबा पहले ही उठा ले वे कई ऐसे भी कहते हैं बाबा हमको पहले ही उठा ले वे, हमको वो अंत का नहीं देखना है। वो जो है वो हाथ उठाए, अभी वो सोचेंगे कैसे हाथ उठाए नहीं, अंदर तो होता भाई ये मैं तो नहीं देख सकूं। और बाबा कितना वर्णन करते हैं वो अंत के समय का, और यहाँ तक बाबा कहते हैं अंत का जो पेपर होगा वह 1 सेकेंड का होगा, हाँ और ना, बस जाना तो सबको है, लेकिन उस समय बाबा की याद रही या कोई देहधारी की याद रही वो बस वही कसौटी होगी। क्योंकि अगर कोई देहधारी की याद रही फेल, पर बाबा के सिवा और कोई नहीं तो पास, लेकिन उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास। इसलिए बाबा अशरीरी होने लिए कहते हैं। तो अशरीरी होना माना अभी अभी 1 सेकेंड में अव्यक्त वतन, अभी अभी 1 सेकेंड में निराकारी दुनिया, अभी फिर साकारी दुनिया, अभी स्वर्ग में, मानो ये आप एक ड्रिल सदा करते रहो। ये ड्रिल जो सदा 1 सेकेंड की भी है, 5 स्वरूपों की स्मृति, ये ड्रिल से मन की शक्ति आपकी इतनी पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि जो संकल्प करना चाहो वो कर सकते हो। इसलिए ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अचानक होगा, बाबा कहते अचानक होगा। अब अचानक होने के लिए तो एवर रेडी बनना पड़ेगा, इसलिए 3 शब्द बाबा कहते हैं, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। तीनों का आपस में कितना कनेक्शन है। हम कहेंगे बस लास्ट में हम फास्ट चले जाएंगे, नहीं जा सकेंगे, इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि सब अचानक होना है और उसके लिए एवर रेडी बनना है। और एवर रेडी बनने के लिए ये प्रैक्टिस करनी है अशरीरीपन की अवस्था। और अशरीरी में प्रैक्टिस क्या करनी है, 1 सेकेंड में पहुंच गए परम धाम, 1 सेकेंड में फरिश्ता स्थिति, ये फरिश्ता की ड्रेस, चमकीली ड्रेस, हाँ बाबा कहते हैं 1 सेकेंड में पहुंच जाओ स्वर्ग में या देखो वो सीन सीनरिया। इसलिए बाबा मुरलियों में कॉन्ट्रास्ट करते कलयुगी दुनिया और सत्युगी दुनिया, यहाँ क्या है और वहाँ क्या होगा, पहुंच जाओ उस दुनिया में। बाबा कई बार कहते हैं ना, जब कुछ पहले शिप में जाते थे तो हैदराबाद सिंध जो था ना, तो वो शिप में तो ट्रैवल करते थे क्योंकि बिजनेसमैन थे। हैदराबाद जो सिंध वर्क ही कहते थे, हैदराबाद सिंध में सब बिजनेसमैन थे सिंधी लोग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था उनका, तो लंदन अमेरिका सब जगह उनके बिजनेस होती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। तो जहाज हवाई जहाज तो इतने थे नहीं, पर जहाज़ों में जाते थे। और तो बाबा कहते जब वो जहाज हैदराबाद के नज़दीक आता था तो वो चिमनियाँ थी, उस समय चिमनियाँ बहुत थी, जहाँ से धुआं निकलता था ना, खाना पकाते थे या जो कुछ भी घरों की चिमनियाँ, तो जब वो चिमनियाँ दिखाई देती थी जहाज से, हम बस पहुँचे हैदराबाद, पहुँचे हैदराबाद। हाँ, उस समय ऐसे तो बाबा वर्णन करते हैं मुरलियों में, तो घर याद आता है। यहाँ भी अभी कई बार फ्लाइट में जाते हैं ना, अब जैसे प्लेन लैंड हुआ, खाली लैंड हुआ ही नहीं, बस पहुँच रहा है धरती पर उतर रहा है, हम लोगों का मोबाइल चालू हो जाता है। हाँ, मोबाइल चालू हो जाता है, पूछना चालू हो जाता है, गाड़ी भेजी कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, ऐसे हुआ कि नहीं, घर पहुँच गया, मन पहुँचता है कि नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा ये पांच स्वरूपों की स्मृति माना, एक सेकंड में आप मन में ये संकल्प लाओ, टाइम नहीं लगे। और फिर फरिश्ता बनने के बाद फिर क्या बनना है, घर जाना है, यहाँ बिंदु बनना है, बिंदु स्थिति। अशरीरी स्थिति में फिर उनसे भी ऊंची स्थिति है बिंदु स्थिति, अशरीरी स्थिति से भी आगे बिंदु स्थिति। बिंदु स्थिति माना सब हिसाब किताब चुकतू, आत्मा पावन बन के अपने घर गए, फिर सत्युगी नई दुनिया में आना है। तो मनुष्य से देवता बनना, उसके बीच में कितनी लंबी यात्रा है, अब ये यात्रा करनी है। हाँ, करेंगे ना, ये तीन दिन ये यात्रा करनी है, और ऐसी यात्रा करो जो यहाँ से आप बदल कर जाओ। घर वाले कहे अरे भट्टी क्या की, ये तो एकदम सच्चा सोना बन गया, ये तो सोना बन गया, ये तो इतना बदल गया। तो आपके परिवर्तन से, आपके परिवर्तन से दूसरे बदल जाएंगे। तो परिवार का परिवर्तन, फिर मोहल्ले का, फिर समाज का, देश का, विश्व का, क्यों नहीं होगा परिवर्तन। पर ये भी पता है कि सब तो देवता बनने वाले नहीं है, पर जो बनने वाले हैं वो तो ज़रूर बाबा के पास आएंगे। इसीलिए हम अपना पुरुषार्थ जारी रखें, बाकी ड्रामा वो तो बाबा का कार्य है, भगवान का कार्य है, हमको अपनी दृढ़ता नहीं छोड़नी है। तो एक उस पर एक चुटकुला आता है, आपको मैं बताती, दृढ़ता नहीं छोड़नी है। वो बताते ना, बाबा ने उस दिन भी कहा कि अंगद के समान पांव ऐसा डटा हुआ है, इतना दृढ़ता वो पांव डटा हुआ कि रावण भी हिल जाए लेकिन आपका पांव न हिले। तो उस पर एक जोक बनाया किसी ने, कहीं मैंने पढ़ा कि जब अंगद रावण के वो महल में आया तो उसने पांव जमाया, अब आप हिला के देखो, आप इसको हिला नहीं सकोगे तो आप मेरे को हिला नहीं सकोगे तो राम को क्या करोगे आप, मैं तो उसका केवल दूत हूँ। तो रावण ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, नहीं हिला सका। तो फिर वो कहानी आती, फिर ये जब जीत करके वापस गया अपने बैरक में राम के पास, तो उनके जो और मित्र थे, दोस्त थे, उन्होंने कहा अरे अंगद आपने तो कमाल कर दिया, अगर आपका पांव हिल जाता होता तो। उसने कहा मेरे को क्या है, वो तो राम की सीता थी, मेरी थोड़ी थी, ये तो राम का काम है ना। ये तो राम की सीता के लिए मैं गया था ना कि उनको आप छोड़ो, तो अगर हिल जाता तो वो तो राम को ख्याल रखना चाहिए ना, मेरे को थोड़ी, मैं तो खाली अपना पांव रखा, तो शक्ति किसकी। हाँ, ये अंगद की अपनी थोड़ी थी, वो तो राम की शक्ति उनको मिली जो रावण
हिला नहीं सका। चलो ओम शांति।
ओम शांति। जैसा कि आदरणीय दीदी ने बताया कि अंगद का पैर क्यों नहीं हिला, राम की शक्ति थी अंगद के पैर में इसलिए नहीं हिला। इसलिए आगरा क्षेत्र का भी जो स्थापना की है वो पिता श्री ब्रह्मा बाबा के संकल्प से हुई है। पहला म्यूजियम जयपुर और आगरा दोनों बाबा के संकल्प से ही बनी थी, जिसके परिणाम स्वरूप वो आगरा इतना 5 राज्यों में फैला हुआ विस्तृत सब जोन बना। इसलिए बाबा को अपने बच्चों के निश्चय को अडिग और दृढ़ रखने के लिए पुलिस, प्रशासन, प्रकृति सब पर जीत प्राप्त कराई। ये इनका तो निश्चय था ही था, लेकिन साथ में पिताश्री ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त बाप दादा का बल हम बच्चों के साथ था। आदरणीय दीदी को अव्यक्त बाप दादा ने सरस्वती का वरदान दिया है। जब दीदी बोलने लगते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे अमृत वर्षा हो रही है। हम मुरलियों में हमेशा सुनते हैं देही अभिमानी विदेही अशरीरी बिंदु, लेकिन चारों बातों को सीरियल की मोतियों में पिरो करके दीदी ने हमारी संपन्नता, संपूर्णता और कर्मातीत स्थिति को हम कैसे प्राप्त करें, भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य आदरणीय दीदी ने दिया। आदरणीय दीदी हमारे संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय गौरव है। आपको एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक प्रवक्ता के रूप में माना जाता है और हमारे पांडव भवन हेडक्वार्टर की शान है। हम सब ब्राह्मणों की दिल की धड़कन है। आज ये मुरली के द्वारा राज्यों का इनोवेटिव जो किया, कमेंट्री जो निर्मित हुई, उसकी प्रथम रचयिता आप ही आदरणीय शीलू दीदी हैं। इतना सुंदर हमें भट्टी का लक्ष्य दिया, तो मेरा आप सब भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप 3 दिन 3 मौन को धारण करेंगे। पहला मन का मौन, दूसरा मुख का मौन और तीसरा मोबाइल का मौन। आज हमारे मोबाइल बजे हैं, कोशिश हो तो सब बहुत जरूरी है तो साइलेंस में अपने फोन को रखो, ज्यादा अच्छा होगा कि स्विच ऑफ रखो। शाम को 9:30 बजे एक बार खोलकर कोई मैसेज है उसको देख लो और फिर उसे 3 दिन के लिए उसको भी तपस्या करा दो उसकी बैठ जी। 3 दिन नहीं देखें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये सब करेंगे तो दीदी को हाथ उठाकर हम धन्यवाद करेंगे। ये दीदी राम की शक्ति से पैर को गाड़ने वाले अंगद है, ठीक है ना। तो कोई भी अपना मौन भंग ना करे, हल्के रूप में भी ना ले, बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ हम मौन करें। हमारे बहुत सुंदर बिंदु बहन जी ने प्रोग्राम बनाया है और सभी हमारे वरिष्ठ वक्तागण आएंगे और हमारी वरदानों से झोली भरेंगे। हम उनका लाभ तभी ले सकेंगे जब हमारा मौन होगा। तो मैं किन शब्दों में हम आदरणीय शीलू दीदी का धन्यवाद करें जिन्होंने हमें अपनी संकल्प की डोरी से सब स्थानों से 5 राज्यों से आगरा क्षेत्र के भाई बहनों को डायरेक्ट ब्रह्मावत्सों को यहाँ खींच लिया और हम यहाँ पहुँच गए। हम दीदी का इतना सुंदर लक्ष्य और उद्देश्य हमें भट्टी का दिया, हम तहे दिल से दीदी का आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया करते हैं। और दीदी हम प्रातः जो दिनचर्या बनी है उससे लेकर रात्रि दिनचर्या तक जो हमें बना के दिया है आपने, उसको अंगे अक्षरे हम पालन। बोलो भाई, दो दो हाथ उठा के दीदी को संकल्पित करें जी। दीदी थैंक यू। दीदी